ओम शांति। किसी युग में इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़े सम्राट का राज्य था और उस सम्राट का केवल एक ही पुत्र था, एक ही राजकुमार। एक दिन सम्राट अपने पुत्र से, अपने बेटे से रूठ गया, क्योंकि वो बेटा भी वैसा ही था, आलसी, कोई काम नहीं करना चाहता है, चाहने वाला। तो सम्राट ने बहुत सारी उसकी गलतियों को माफ किया, परंतु एक दिन उस बेटे को महल से निकाल दिया। केवल महल से नहीं तो देश से निकाल दिया। और वह राजकुमार उस देश को छोड़कर चला गया। उसे ऐसी कोई विद्या, ऐसी कोई कला नहीं आती थी, ऐसा कोई हुनर भी उसके पास नहीं था जिस आधार पर वो जीवन यापन करे। बचपन में जो थोड़ा बहुत गाना और नाचना सीखा था, सोचा अब इसी को आधार बनाऊं और किसी सुदूर देश में वो गया और वहां पर यूं ही नाचना और गाना और भिक्षा मांगना, और वह संपूर्ण जैसे कि भिखारी बन गया। तपती धूप, फटेहाल, भीख मांगता रहता। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी पहले जैसा न रहा, बहुत ही दुर्बल हो गया, खस्ता हाल। इस तरह से 10 वर्ष बीत गए और वह राजकुमार ये भूल ही गया कि मैं राजकुमार हूं। भिखारियों की तरह उसका जीवन हुआ, गलियों में भटकता, गलियारों में गाता, कभी भूखा भी रहता, कभी भिक्षा मिलती कभी न मिलती, कभी लोग उपहास उड़ाते, ऐसा उसका हाल हुआ। और जैसे कहा, वह राजकुमार पूरी तरह से विस्मृत हो गया कि वह कौन है। इधर राजा भी बूढ़ा होने लगा था, और इसी तरह जब 10 वर्ष बीत गए तो सम्राट को ख्याल आया कि मेरा उत्तराधिकारी कौन। एक ही तो बेटा था, इतना बड़ा राज्य कौन इसकी संभाल करेगा, कौन जनपालक, जनरक्षक बनेगा। अपने प्रधानमंत्री से कहता है कि जाओ और ढूंढो मेरे उस बेटे को जिसको कभी देश निकाला दिया था, और ले आओ उसे, नहीं माने तो विनती करो, किसी भी तरह से वापस राज्य में ले आओ। प्रधानमंत्री पूरे देश भर ढूंढता है, कहीं नहीं मिलता है, देश से बाहर के देशों में जाता है, लंबी लंबी यात्राएं करता है, परंतु बेटा कहीं नहीं मिलता है। और अचानक एक दिन किसी उसी देश में जहां पर उसका बेटा होता है और भिक्षा मांगते रहता है, दूर से प्रधानमंत्री उसे देख लेता है, अपने स्वर्णिम रथ से उतरता है और उस युवक के पास पहुंचता है, उस भिक्षक उस भिक्षु कहो या फिर भिखारी कहो, उस समय वह भिखारी एक दुकान के सामने खड़ा होता है, उसके पैरों में कोई जूता नहीं होता है, पैरों में छाले और रक्त, और अनुनय विनय करता हुआ वह बेटा, वह भिखारी उस दुकानदार से कह रहा है कि कोई जूते दे दो। और उसी समय वह प्रधानमंत्री वहां पहुंचता है और उस भिखारी से कहता है कि क्या कहता होगा, हे राजकुमार, मैं आपको लेने आया हूं। वो बेटा उस प्रधानमंत्री को देखता है और तुरंत पहचान लेता है। प्रधानमंत्री कहता है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे सारी गलतियों को माफ कर दिया, घर वापस चलो। वो बेटा तुरंत तैयार हो जाता है, उसके हाथ में भिक्षा का पात्र होता है, उसे फेंक देता है और तुरंत आदेश देता है, महामंत्री जाओ और मेरे लिए अच्छे वस्त्र और अच्छे जूते ले आओ, मेरे स्नान के लिए पानी तैयार किया जाए। अभी तक भिक्षा मांग रहा होता है और यह सब कहकर अपने रथ की ओर जाता है। अभी उसका चलना, उसकी चाल बदल जाती है और जाकर सुशोभित होकर वो सारे वस्त्र और आभूषण पहनकर, मुकुट पहनकर रथ में जाकर बैठता है और कहता है, वहां बैठकर कहता है कि चलो मुझे अपने महल की ओर जाना है। थोड़े देर पहले वहां जो लोग थे जिनसे वो भिक्षा मांग रहा था, वो सारे रथ के आसपास आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, क्या तुम वही हो जो अभी अभी भिक्षा मांग रहे थे? वो कहता है, मैं वो अब नहीं रहा, मैं अब राजा हूं। क्या तुम उसे भूल गए? वो कहता है, हां, क्योंकि मैं भूला हुआ था कि मैं राजा हूं, इसलिए भिक्षा मांग रहा था, अब तो मुझे राज्य संभालना है। जैसे वो भिखारी कभी था ही नहीं, राज्य की ओर चलता है। राज्य में पहुंचता है तो उसके पिता स्वागत के लिए बाहर खड़े हैं, पूरे नगर को सजाया गया है और स्वागत सत्कार के साथ उसके पिता उसे बहुत प्यार करते हैं, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और फिर उसका राज्य अभिषेक भी करते हैं, वह राजा बनता है, वह सम्राट बनता है और उसको आशीष भी देते हैं और कुछ शिक्षाएं भी। कहानी को यहीं छोड़ देते हैं। और मुरली की ओर चलते हैं, पर उसके भी पहले कहानी को 12 भागों में विभाजित करते हैं। कहानी को 12 भागों में विभाजित करते हैं। वह युवक, वह भिखारी था। क्या था वो? भिखारी था। किसी ने सोचा भी नहीं था, सबके लिए यह असंभव बात थी कि वो इतना श्रेष्ठ बन जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। दूसरी, वो इतना साधारण था कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि सम्राट का लाडला हो जाएगा, सम्राट के आंखों का नूर बन जाएगा। तीसरा, वो इतना होपलेस कहो, नाउम्मीद था कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो इतना श्रेष्ठ बन जाएगा। चौथा, वो अनपढ़ था, उसने कभी पढ़ना भी नहीं सीखा था, परंतु अभी भाषा ज्ञानियों से कर रहा है। अभी कैसे बोल रहा है, जैसे कि मोस्ट नॉलेजफुल, मोस्ट नॉलेजेबल, ऐसी भाषा उसकी हो गई है। पांचवा, पहले तो यहां से वहां जाने के लिए बेचारा पैदल, चप्पल भी नहीं, कितना समय लगता था, अब उसके पास रथ है, रथ से एक क्षण में इधर और एक क्षण में उधर। छठवा, पहला जिन गलियों में घूमता था वहां पर झंडे दिखाई देते थे, परंतु अब जब वो सम्राट बन चुका है तो अब हर झंडे पर उसका नाम है। पहले बहुत ही भोला था और अब कैसा बन गया, बहुत होशियार, बहुत बुद्धिमान, बहुत सुजान, बहुत चतुर सुजान। पहले लोग उसे अपमानित भी करते थे और वह देखता था किसी किसी की प्रशंसा हो रही है, परंतु अब कौन उसकी प्रशंसा कर रहा है, स्वयं सम्राट। वो जो प्रशंसा करने वाले थे हद की थी, कभी तो ग्लानि भी करते थे उनकी, जिनकी कभी वो प्रशंसा करते थे, ऐसी वो हद की प्रशंसा थी। अब प्रशंसा करने वाला कौन है, अब महिमा करने वाला कौन है, किसके मुखारविंद से वो प्रशंसा आ रही है। नौवा, नशा, कैसे फेंक दिया उस भिक्षा पात्र को, जैसे ही मुख्यमंत्री ने क्या कहा, राजकुमार चलिए, भूल ही गया कि अब तक भीख मांग रहा था, ऐसा नशा चढ़ गया। दसवा, पिता ने बहुत सारी महिमा की, बहुत सारे टाइटल दे दिए और राज्याभिषेक हुआ और वरदान दिया, आशीष दिया और एक शिक्षा दी कि जो आशीष मैं तुम्हें दे रहा हूं उसे संभाल कर रखना, चिरंजीवी भव। आज बाप दादा किसको देख रहे हैं, अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं, अधिकारी अर्थात जिनके पास अधिकार है, अधिकार अर्थात, अधिकार अर्थात क्या, अधिकार का क्या अर्थ है, अधिकार के बहुत सारे अर्थ है, एक तो वह अधिकार इख्तियार, हक, राइट जिसको कहते हैं, कानून के द्वारा, पद के द्वारा, योग्य के, योग्यता के द्वारा जो प्राप्त होता है वह। दूसरा अधिकार अर्थात कब्जा, अधिकार ले लिया। तीसरा अधिकार अर्थात हुकूमत, भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। चौथा अधिकार अर्थात ज्ञान, भाषा पर अधिकार। और पांचवा अधिकार अर्थात पात्रता, स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। अधिकार के बहुत अर्थ है, बाबा क्या कह रहे हैं, किसके अधिकारी हो, भाग्य के अधिकारी हो, भाग्य का ज्ञान है, भाग्य की पात्रता है, भाग्य पर हुकूमत, भाग्य का हक, इख्तियार, कब्जा। तो ऐसे हम कौन है, कल्प कल्प के, एक कल्प के नहीं, कल्प कल्प के अधिकारी आत्माएं, भाग्य के अधिकारी आत्माएं। बाप दादा की रुहरियान, और ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, फिर से उसी कहानी की ओर। सबसे पहली पॉइंट, जो कि इतने साधारण आत्माएं थी, जिन्हें लोगों ने क्या समझा था, असंभव है कि ये श्रेष्ठ बनेंगे, वो बन गए। संसार ने क्या कहा था, ये साधारण है, कैसे श्रेष्ठ बन सकते हैं, जैसे उस बेटे को समझा था लोगों ने, परंतु वो सम्राट बन गया। वैसे हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, मुरली में कहीं और कहा है बाबा ने, कि भगवान के साथ पिकनिक करेंगे, भगवान के साथ खेलेंगे, हंसेंगे, खाएंगे। सोचा था कभी साकार में वो। तो दूसरा क्या थे हम, साधारण, और क्या बन गए, बाप के आंखों के नूर। भगवान ने अपनी आंखों का नूर बनाया है। कहीं और बाबा ने कहा है कि बच्चे कंप्लेन करते हैं कि बाप से प्यार है, योग तो लगाते हैं परंतु प्यार का अनुभव नहीं होता है। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया, विधि नहीं जानते, कौन सी विधि नहीं जानते, प्यार के सागर के साथ योग लगाओ और प्यार का अनुभव नहीं हो, ये हो नहीं सकता। विधि क्या है फिर, न्यारे नहीं हो। जहर कौन सा है, चखा है सभी ने, जहर कौन सा है, देह और देह के संबंधों में लगाओ, जहर की उपमा की है, जहर है वो। नहीं तो ये हो नहीं सकता कि आत्माएं आए भगवान के पास और भगवान का ध्यान करे और भगवान से योग लगाए, वह जो प्रेम का सागर है, और उन्हें कोई प्रेम की अनुभूति ना हो। हुजूर हाजिर है, एक ही विधि है न्यारापन, एक ही विधि है मेरा बाबा। रामायण में कहीं वर्णन है कि भरत श्री राम को लेने निकलता है, राज्य का त्याग कर दिया, तापसी वस्त्र धारण किए हुए है और राम को लेने निकल पड़ा है। जंगल में चित्रकूट के समीप पहुंचता है और वहां से राम को देखता है और भागता है। उठी राम सुनी प्रेम अधीरा, राम क्या करते हैं, उठते हैं। उठी राम सुनी प्रेम अधीरा, कहीं पट कहीं निशंग धनु तीरा, कहीं पर पट कहीं राम के वस्त्र गिरे, कहीं पट कहीं निशंग कहीं तरकस गिरा, कहीं धनुष्यवान धनुष्य और कहीं तीर। कथाकार बहुत सारे अर्थ लगाते हैं इसके। जब भक्त पुकार रहा है, जब आत्मा पुकार रही है, तो परमात्मा उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, वो प्रेम का सागर है और अधीर हो रहा है उसकी, उसका धैर्य है, उसकी यह बेचैनी है। बाप रह नहीं सकता, बाप को अच्छा नहीं लगता, सुना सुना लगता है। वस्त्र एक तरफ कहीं निशंग धनु तीरा, ऐसी उसकी स्थिति है। तो साधारण थे श्रेष्ठ बन गए, ना उम्मीदवार थे उम्मीदवार बन गए, नैनों के नूर बन गए। चौथा अनपढ़ थे, तो उसने क्या कर दिया, अपनी सेना में भर्ती कर नॉलेजफुल बना दिया। कमांडर सामने है और सामने कौन सी सेना है, शिव शक्ति पांडव सेना, संगम युगी ऑलमाइटी ऑथॉरिटी पांडव सेना सामने है, अस्त्र शस्त्रधारी ऐसी सेना सामने, उनमें बल भरने आया है। वो सेना थक जाती है परंतु बार बार बल भरता है। सिकंदर जब भारत में आ रहा था तब उसकी सेना के सिपाही बार बार थक जाते थे और कहते थे कि बस अब नहीं जाना है, आगे बहुत हो गया, कितना दाएंगे, हमारे बीवी बच्चे उधर है। वो ऐसे ऐसे भाषण देता था बीच में कि फिर से उनमें जोश आ जाता था, पावर भर जाती थी। यहां सुप्रीम कमांडर सामने है और उसके सामने सारी सेना है, उपस्थित है मैदान में। पांचवा, पहले जाने में यहां से वहां झेलने में तुम्हें समय लगता था उस भिखारी को, अभी तो उसके पास रथ है और हमारे पास कौन सा रथ है, क्या करते हो एक सेकंड में, सीधा परमधाम में चले जाते हो। छठवा, झंडा, वो लोग तो हिमालय पर झंडा लहराते हैं, तुमने कहां लहराया, तीनों लोकों में कैसे? स्मृति का झंडा, स्मृति का झंडा तीनों ही लोकों में। सातवां, पहले बहुत ही भोले थे वो भिखारी, कितना भोला भाला था, पर रथ पर चढ़कर मुकुट पहनकर कैसे हो गया, ऐसे दिखाई देने लगा जैसे इससे होशियार तो कोई है ही नहीं संसार में। वैसे तुम भी क्या बन गए, चतुर सुजान, विचित्र बाप को जान लिया तो चतुर सुजान बन गए। आठवां, कौन महिमा कर रहा है तुम्हारी, किसने कहा है, वहां तो गुरु कहते हैं तो वो शिष्य याद रखते हैं, फलक से रहते हैं, तुम्हें भी नशा होना चाहिए, किसने कहा है तुम क्या हो कौन हो। अविनाशी बाप से जो निकलती है महिमा, वो महिमा भी क्या हो जाती है, कायम अविनाशी हो जाती है। ये मुरली अमर कथा है, अमरनाथ समझा रहा है। दसवा क्या, टाइटल्स, कौन से टाइटल दिए आज, तुम क्या हो, विधाता हो, वरदाता हो, भाग्य दाता हो, और दसवा वरदान। तो आज की मुरली में कौन सा वरदान दिया है राजीव भाई बाबा ने, कौन सा वरदान दिया है? जब से मनुष्य सृष्टि हुई है सभी को एक इच्छा हमेशा से रही है, किसकी, अमरता की और अजरता की। यहां तक कि देवताएं भी पहले अमर नहीं थे, शास्त्रों में दिखाते, वो तो सागर मंथन से अमृत निकला, वो पिया, उसके बाद में फिर अमर बने, ऐसी कहानियां हैं। परंतु कई कई देशों में ऐसा भी है कि अमरता एक शाप दिखाया है, लंबा समय जीना, कई कई देशों में, कई कई सिद्धांतों में, कई कई सभ्यताओं में शाप का जैसा दिखाया है। मनुष्य की हमेशा ही इच्छा रही है क्या होने की, अमर होने की, अमरता को प्राप्त करने की। बाबा ने आज वरदान दिया है अमर भव। किस अमरता की बात चल रही है, देह की या आत्मा की? आत्मा तो अमर है ही अभी किसकी अमरता की बात चल रही है, क्या देह की अमरता की? क्या देह अमर हो सकता है? देह कैसे अमर हो सकता है? मृत्यु तो इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से कोई नहीं छूट सकता, नितांत सत्य है मृत्यु। तो शरीर तो छूटा, दूसरा आ गया आत्मा। आत्मा अमर बनाने आया है बाबा क्या क्या कहेंगे, अमर भव किस लिए? आत्मा, आत्मा तो है ही अमर। सदियों पहले उपनिषद के ऋषि ने आत्मा की अमरता की घोषणा संसार के सामने कही थी। उपनिषद का ऋषि खड़ा है चट्टान पर, वहां से चिल्लाता है, श्रृण्वन्त विश्वे, हे विश्व की आत्माओं सुनो, अमृतस्य पुत्राः, तुम अमृत की संतान हो, आये धामिनी दिव्यानि तस्तु वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। आदित्य वर्ण हो तुम, सूर्य की तरह तुम्हारी कांति है, देवताओं का जो वर्णन है, वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम्, जिस महान पुरुष का वेदों में वर्णन है वो तुम है, ओ चिल्ड्रेन ऑफ इमोर्टेलिटी। तो आत्मा तो अमर है ही, फिर किसकी अमरता की बातें बाबा कर रहे हैं, और कौन से अमर होने का वरदान दे रहा है? अमर भव। तो उसकी लिस्ट आज निकालेंगे। और उसके पहले लास्ट पॉइंट था, उस सम्राट ने अपने बेटे से कहा कि जो वरदान मैं तुम्हें दे रहा हूं उसे अंडरलाइन करो, इस युग की यह विशेषता है, इसे बार बार याद करो, इसी नशे में रहो, इसी खुशी में रहो, चेक करो, वरदानी बना हूं। तो आज की चर्चा अमरता पर करेंगे, पॉइंट्स मुरली के अंदर से ही सुनाने हैं, बाहर से बाद में, किन किन बातों में अमर बनना है। निखिलेश भाई, किस बातों में अमर बनना है? मुरली अभी बाकी है, किस में अमर बनना है? आज की ही मुरली से आगे से बताओ किस बातों में अमीर अमर बनना है। जो टाइटल दिए हैं, जो वरदान दिए हैं, उनकी स्मृति में रहना, उनके नशे में रहना, उनकी याद में रहना, उनको जीवन में धारण करना, इसमें अमर बनना है। अमर भव, अमर भव के वरदानी बनो, इस युग की यह विशेषता है। एक जगह बाबा ने यह भी कहा है, ये वर्षा है, मुरली में एक जगह कहा अमर भव ये वर्षा है, इसका अधिकार तुम्हें लेना है। तो संगम युग का वर्षा कौन सा है? अमर भव। जन्मते ही वरदान दिया है अमर भव। तो एक तो टाइटल्स की स्मृति, दूसरा आज की ही मुरली से सुनाना, बाप के निरंतर साथ की स्मृति, बाबा ने एक जगह कहा है जो इसकी हमने चर्चा की, देह और देह के संबंध जो है वो क्या करते हैं? दुख को जन्म देते हैं, अशांति को जन्म देते हैं, जहर है, चख लिया, देख लिया, पी लिया, खा लिया, अब क्या बाकी रहा? परंतु यह ज्ञान की यह जहर है, योग लगाते हैं परंतु प्रेम का अनुभव नहीं है, इस प्रेम का अनुभव उसके अमर भव। ये जो प्रेम है परमात्मा प्रेम, ये बढ़ता जाए, ये शाश्वत रहे, इमॉर्टल रहे, इटर्नल रहे, अनडाइंग रहे, कभी खत्म ना हो, चिरस्थाई रहे, इसकी इसकी अमरता, परमात्मा प्रेम की अमर था। एक वैज्ञानिक था, उसने एक बहुत सुंदर प्रयोग किया था। उसने दो बकेट ली, बाल्टियां, जिसमें एक बकेट में उबलता हुआ पानी था, बिल्कुल उबलता हुआ पानी, उसमें एक मेंढक को छोड़ा, तो क्या किया होगा उस मेंढक ने? उछलकर बाहर कूद पड़ा। और दूसरी जो बकेट थी उसमें कुनकुना पानी था, ल्यूक वार्म वाटर, उसमें भी एक मेंढक को छोड़ा, तो उस मेंढक ने क्या किया होगा? वो मेंढक वहीं रहा, क्योंकि पानी इतना गर्म नहीं था तो क्यों कूदेंगे बाहर। पहला जो था पानी बहुत ज्यादा गर्म था और मेंढक कूद कर बाहर आ गया एक छलांग लगाकर। दूसरे जो बकेट थी उसमें मेंढक एडजस्ट करता गया, किसके साथ? पानी के साथ, करता गया करता गया, पानी फिर नीचे से उबालना चालू किया। वैज्ञानिक ने पानी को धीरे धीरे उबालना चालू किया, पानी का तापमान, बहुत ताप, वो टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मेंढक अभी भी नहीं निकल रहा है और मेंढक कुछ देर के बाद मर गया। अब प्रश्न ये है कि पहला मेंढक क्यों जिंदा रहा और दूसरा क्यों मर गया, कौन बताएगा? तो क्या हुआ, दोनों उबल, अंततो गत्वा तो दोनों ही पानी का तापमान सेम था, परंतु फिर भी पहला छूट गया और दूसरा मर गया, क्यों? एडजस्ट करते करते शक्तियां खत्म हो गई और पहला जो था उसने तुरंत जान लिया था ये पानी गर्म है, ये जहर है, देह और देह के संबंध, इसमें एडजस्ट नहीं करना है, नहीं तो। परंतु दूसरे ने क्या सोचा? तोड़ निभाने के नाम पर बाबा ने कहा है तोड़ निभाओ, तो एडजस्ट करता गया और संबंध और बढ़ते गए, वासना प्रगाढ़ होती गई, तापमान बढ़ता गया और एडजस्ट ही कर रहा है कर रहा है कर रहा है, और एक दिन खत्म, चख लिया, देख लिया, सुन लिया, दोबारा फिर से खाना है क्या? पूछा है बाबा ने प्रश्न। महान आत्मा एक ही बार प्रतिज्ञा करती है, वंस, बस, जिसे छोड़ दिया वो छोड़ दिया, अब वो रहा हमारी नहीं, जिन विकारों को छोड़ दिया उनसे अब हमारा कोई लेना देना नहीं। और किसने अमर। सर्व प्राप्ति संपन्न, जब तक सर्व प्राप्ति नहीं तब तक संपन्न नहीं, और जब तक संपन्न नहीं तब तक वरदानी और वरदानी नहीं बन सकते, क्योंकि आत्माएं कैसी है संसार की, कमजोर है। उदाहरण दिया है बाबा ने मेडिकल का, मेडिकल का है या साइकोलॉजी का है बाबा से ही पूछना पड़ेगा। कमजोर दिल, ये हार्ट की बातें चल रही है या भावनाओं की। जिसका दिल कमजोर होता है मेडिकल में उसे लो इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। जो पेशेंट बार बार LVF लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में जाता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, कभी वेंटिलेटर की भी आवश्यकता पड़ती है, उसकी बातें चल रही है कि उसको अगर बढ़िया चीज भी दो तो वो लेता नहीं है। या बाबा भावनाओं की बातें कर रहे हैं, तो कमजोर दिल जिसका है उसको अगर कुछ चीज दी जाए तो वो लेता नहीं। आत्माएं भी ऐसी कमजोर है, लेने में भी कमजोर है, ले भी नहीं सकती है। तो क्या बनो? चक्रधारी। क्या बनो? चक्रधारी, चक्रवर्ती, स्थूल और सूक्ष्म, संपन्न बनाओ, विधाता और वरदाता दोनों ही, भाग्यदाता भी कहा है एक जगह, वो भी बनो। तो किस में अमरता हो? विधाता बनने में अमरता, भाग्यदाता बनने में अमरता, वरदाता बनने में अमरता, संपन्न बनने में अमरता, सर्व प्राप्तियों से स्वयं को भरने में अमरता, वरदान देने में अमरता। लेना तो बहुत आसान है, गोल्डन चांस, पर तू लेते ही रहोगे कि अभी देने का काम है हमारा। आत्माओं को क्या देना है? पंख देने हैं। पिछले कभी कहा था ना बाबा ने, प्राप्तियों के पंख दो, आंख दो एक परखने की। और किसमें अमरता? अच्छा, नारियल। तो कौन सा नारियल तोड़ना है और कौन सी रिबिन काटनी है? एक मत पर नहीं, पर मत नहीं, मन मत नहीं, जन मत नहीं। कौन सी मत? एक मत, वन डायरेक्शन केवल। पर में क्या है? पर में धोखा है, पर में बहुत बड़ा धोखा है। पश्चिम जगत का एक विचारक है जीन पाउल सात्र, अस्तित्ववाद फ्रांस का, उसने एक जगह लिखा है दी अदर इज हेल, जो दूसरा है वो नरक है। सुख जो है स्व में है, दुख जो है वो अर्जित किया जाता है। सुख तो स्वभाव है, दुख को कमाते हैं हम, सुख तो स्वभाव है। दुखी होने के मार्ग बहुत है, सुखी का क्या मार्ग? वो स्व में स्थित हो जाओ तो सुख। दूसरे में जाना पर में, द अदर इज हेल, वो छोड़ना और स्व में स्थित होना, यही निजता आनंद है। मन एक मत, दूसरा एक बल, केवल एक ही बल, एक ही पर विश्वास, एक ही पर भरोसा, एक ही का सहारा, एक ही का आधार, एक ही आश्रय, सब कुछ एक, सब एक पर अवलंबन, एक ही सपोर्ट, एक ही संबल, केवल एक। और अंतिम एकता, इसकी क्या करनी है? और नारियल कौन सा फोड़ना है? सर्व की संतुष्टता और सर्व की प्रसन्नता का। तो इस सर्व को प्रसन्न करना और सर्व को संतुष्ट करने की अमरता, कि का अमर भव वरदान, कि जिसमें केवल एक, एक और एक ही हो। दूसरा आया तो धोखा है, एक को छोड़कर दूसरे पर विश्वास किया तो खतरा है। इसके लिए विश्वास एक में। एक राजा अपनी पत्नी को कभी विवाह के बाद घूमने ले जाता है किसी नौका यात्रा के लिए, और जब नौका यात्रा करते रहते हैं तो अचानक से तूफान आता है, इतना तेज तूफान कि अब डूबा नाव तब डूबा। तो रानी इतनी घबरा जाती है क्या करे और क्या न करे, अब तो बस मृत्यु ही आसन्न है, मृत्यु समीप है, क्या करे वो राजा। और परंतु वो जो राजा इतना निश्चिंत रहता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, नहीं नहीं सोया नहीं है वो जागा है, वो सोया तो जीसस क्राइस्ट दिखाते हैं उधर गैलीली की झील में, ये तो जागा है। और जब वो इतनी बेचैन और इतनी चिंतित रहती है और उससे इस तरह से प्रार्थना करती है, राजा अपनी तलवार निकालता है और सीधा उसके गले पर, बिल्कुल अभी एकदम गले के पास, तो वो भी खड़े रहती है, देखती रहती है उसको, तो वो पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लगा। वो कहती है डर क्यों जबकि तलवार तुम्हारे हाथ में है। तो वो क्या कहता है, मेरा जीवन भी उसके हाथ में है, तो इस तूफान से मैं कैसे डरूं, ये तूफान भी उसके हाथ में है, होई सोई जो राम रचि राखा। ऐसा विश्वास उस एक पर, ऐसा भरोसा उस एक पर जो हो रहा है वही ये खुशियों का युग है, वो कह रहा है सत्य है, कल्याण है, उसके एक एक वचन पर विश्वास, एक एक शब्द पर विश्वास, ज्ञान की एक एक पॉइंट पर विश्वास, इसमें अमरता। और किस में अमरता, निर्विघ्न में अमरता, सेवा में, बाप दादा के रजिस्टर में सबसे ऊपर किसका नाम है, जो बहुत भाषण करते हैं उनका, भाषण ठोकने वाले बाबा के रजिस्टर में है या अनुभव कराने वाले बाप के रजिस्टर में, भाषण करना अर्थात पहले भाषना फिर भाषण। तो सेवा में जो निर्विघ्न है उसमें, और एक बात कही बाबा ने, मन के भी विघ्न ना हो, मन की भी अचल अडोल स्थिति, मन की अचल अडोल स्थिति में अमरता, जो अचल अडोल स्थिति है वैसी रहे, नीचे ना है, इसमें अमर भव, मन की स्थिति में अचल अडोल भव, सेवा में निर्विघ्न रहना, इसमें अचल अडोल भव। और किसमें अमर, सर्व संबंध एक बाप से, सर्व संबंध एक बाप से, पोत्री धोत्रा पोत्रा बहू क्या करो इनका मेरे का विस्तार है सारा, मुश्किल है बहुत, सहज नहीं है, मेरा मेरा अनेक मेरे। बाइबल में एक जगह बहुत सुंदर जीजस का वचन है, ही दैट लवेथ हिज मदर एंड फादर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी, जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रेम करता है मेरे लायक नहीं है, ही दैट लवेथ हिज डॉटर और सन मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी, जो अपनी बेटी को और अपने बेटे को मेरे से अधिक प्रेम करता है वो मेरे लायक नहीं है हाँ एक जगह और लिखाया है, लव मी अलोन आई गॉड थाई लॉर्ड आई एम अ जेलस गॉड, मेरे अतिरिक्त किसी से प्यार मत करना, मैं बहुत ईर्ष्यालु परमात्मा हूं, अगर किया तो देख लेना। मेरा हाथ छोड़कर एक अव्यक्त वाणी थी मियां बीबी राजी वाली, सुनी होगी कहीं, उन्हें पढ़ी भी होगी, जिसमें बाबा ने कहा है बाप दादा हाथ बढ़ाते हैं, बाप का हाथ छोड़कर किसी के और का हाथ पकड़कर जाते हो बाप देख नहीं सकता, आई गॉड थाई लॉर्ड आई एम अ जेलस गॉड, मैं ईर्ष्यालु परमात्मा हूं, मेरे को छोड़कर अगर गए तो तो क्या करूंगा और किसमें अमरता, सर्व संबंध एक से निभाने में अमरता, यही शाश्वत हो जाए, यही जीवन का अंतिम सत्य हो जाए। और किसमें अमरता, आज की मुरली से, वैसे तो बहुत सारी है परंतु आज की मुरली से, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति, चलो वो हो गया, संसार की वो आत्माएं हैं जिनका भाग्य, वो जो भाग्य फॉर्च्यून टेलर जो होते हैं वो सुनाते हैं, धन आयु बच्चा, परंतु आयु छोटी ज्यादा सबको एक जैसा सब कुछ नहीं मिल सकता, पर तुम्हें यहां सर्व प्राप्ति 21 जन्मों के लिए पौना है, और बाद में भी अति दुखी के लिस्ट में नहीं है, बाद में भी अति दुखी के लिस्ट में नहीं है, तो इसमें अमरता, सर्व प्राप्ति में, सर्व संबंधों में, भाग्य में, इन सभी में अमरता। और किसमें अमरता? अधिकार, बाप से सर्वाधिकारी, सर्वाधिकारी आत्माएं हो तो अधिकार लेने में अमरता। और किसमें अमरता? पीछे वाले बताएंगे। बाबा ने और एक बहुत सूक्ष्म बात यहाँ कही है प्रश्न उत्तर के माध्यम से। जीवन में जब बहुत सारे पेपर आ जाए तो दो शक्तियों की कमी हो जाती है। कौन कौन सी दो शक्तियां? सामना करने की शक्ति और दूसरी, मुरली से बताओ, हिम्मत। हिम्मत उस समय क्या करना होता है? कार की बैटरी ढीली है तो क्या चाहिए? धक्का। तो किससे लेंगे धक्का? जिस पर विश्वास है, जिस पर विश्वास है और जिस पर भरोसा, वो एक ही हो गया, और जिस पर जो हमारे सीक्रेट को इधर उधर ना को ये कर दे। और किससे? जिससे उत्तर मिले। फेथ है वो हो गया, परंतु जिसका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा है, जो तपस्वी है, जो योगी है, जो नॉन जजमेंटल है, जो पहले से ही जिसके मन में हमारे बारे में पूर्वाग्रह है, बायस्ड माइंड है, उससे नहीं, जो पहले से ही जानता है हमको बहुत ज्यादा और सारी कमी और अपने बिल्कुल फिक्स्ड आइडियाज है कि हम तो कभी ठीक नहीं होंगे, उसके पास नहीं। संसार में काउंसलर के पास क्यों जाते हैं लोग? माँ बाप अपने बेटों को लेके जाते हैं, बच्चों को, क्यों? क्योंकि वो नॉन जजमेंटल होते हैं, पूर्वाग्रह नहीं है कोई, इसलिए बिल्कुल निरपेक्ष भाव से उत्तर देते हैं। और साक्षी है, इन्वॉल्व नहीं है, डिटैच्ड है, ऐसे ही आत्माओं से उत्तर मिलता है। जो बहुत हम में इन्वॉल्व है उससे उत्तर नहीं मिल सकता है। और उसके पास जाकर क्या करना है? इस आधा इसके लिए नहीं जाओ कि उसकी परीक्षा लेने। कई लोग आते हैं और कहते हैं कि आधा घंटा बात करना है, बात करने बैठते हैं और प्रश्न तो रह गए बाजू में, हमारी परीक्षा चालू करते हैं। वो भाव ना हो, ऐसा होता है ना, परीक्षा लेते हैं फिर। गीता में एक जगह लिखा है, चौथे अध्याय 34वां श्लोक, कि जब गुरु के पास जाओ तो बहुत उसकी सेवा करो, प्रेम भाव से जाओ। तदविद्धि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, सेवा करते हुए जाओ। तदविद्धि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, उपदेश अंतिते ज्ञाने न, फिर वो गुरु उपदेश करेगा उस ज्ञान का, तब करेगा। परिप्रश्ने न, ये डाउट लेकर जाना है, परंतु उसको उसको टेस्ट करने नहीं, सेवा भाव से, आदर भाव से। तद्विद्धि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, उपदेशन्ति ते ज्ञाने न ज्ञानिनाम तत्व दर्शनम, उस ज्ञान का वो प्रकाश तुम्हारे पास देगा वो। तो जाना है, और बाबा ने क्या कहा? जाने के बाद क्या करो उसके पास? एक चीज करो, कौन सी? अपने प्रॉब्लम को क्या करो? स्पष्ट, स्पष्टता से उसे बताओ। और ये सब किस लिए हो रहा है? मदद। क्योंकि उस समय जब भिन्न भिन्न परिस्थिति आ जाती, पुरुषार्थ में रुकावट आ जाती है, तब बाप से मदद नहीं ले सकते, सामना करने की शक्ति नहीं है परिस्थितियों से, और हिम्मत भी नहीं है सहयोग लेने के लिए बाबा से। तो क्या करो? इन आत्माओं का सहयोग ले। और ये सहयोग भी किस लिए, ये मदद भी किस लिए? हेल्प फॉर हेल्प, ताकि बाप से हेल्प लेने के पात्र बने। लेनी तो है उसी से, परंतु उसकी भी योग्यता नहीं है, इसके लिए पहले इनसे मदद। पर जिनसे मदद ले रहे उनमें फंसना भी नहीं है। एक बार मदद करके दी तो बस चल दिए हमेशा उनके पास, बाबा रह गया बाजू में। और एक दूसरा पहलू भी है इस बात का, एक व्यक्ति कभी डूब रहा था तो उसे किसी ने बचा लिया। अब जिसने उसे बचाया जब भी मिलता था तो ये बात हमेशा कहता था कि तुम कैसे डूब रहे थे और मैंने तुम्हें कैसे बचाया। एक बार, दो बार, तीन बार, जब भी मिले बस यही बात कि तुम बहुत बुरी तरह से डूब रहे थे, मैंने तुम्हें बचाया है। वो व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है, क्या करूं अब। माना तुमने ही बचाया, ये जीवन तुम्हारा ही दिया हुआ है, तुमने ही जीवदान दिया है, अब क्या मैं और करूं। फिर वो मानता थोड़ी है, तो ये व्यक्ति ने उसे जबरदस्ती, जिसे बचाया था जबरदस्ती, वहीं लेके गया उसी नदी में, नदी के पास अपने कपड़े निकाले और उस नदी में डूब गया और कहा कि देखो मैं डूब रहा हूं, मत बचाना, बहुत बचा लिया तुमने, अब डूबने दो मुझे। उससे तो वो तुम्हारा रोज रोज का उससे तो डूब जाना ही अच्छा था। तो मदद कर देना और उपराम हो जाना, डिटैच्ड, क्योंकि आसक्ति ऐसी चीज है कहीं पर भी उत्पन्न हो सकती है, कहीं पर भी, इतनी सूक्ष्म है वो, जिसको हम समझाने लगे उसमें ही आसक्त हो जाते हैं, जिससे हम गाइडेंस लेने गए उसी में भी आसक्त हो जाते हैं। और लगाव, बाबा ने कहा जहां लगाव है वहां बाप का प्यार नहीं, बाप प्यारे अर्थात न्यारे, वह न्यारापन, वह डिटैचमेंट, वह नॉन अटैचमेंट का भाव अपने अंदर निरंतर रखना है, क्योंकि मनुष्य की यह टेंडेंसी, यह वृत्ति, यह प्रवृत्ति है कि फटाफट अटैच हो जाता है चीजों से, वस्तुओं से, लोगों से, संबंध में, संपर्क में, सब जगह पर फंस जाता है, ये फंसने की उसकी प्रवृत्ति है जितना हो सके। इसलिए बाबा ने कहा ना, ऐसा अपने को शक्तिशाली बना के रखो कि अगर मल्टीपल परिस्थितियां आ जाए तब भी अचल रहे, तब भी अडोल रहे, तब भी वो जो जल का स्रोत है उससे हम खुद ही पानी ले, किसी और की मदद की आवश्यकता नहीं। हाँ, परंतु बाबा ने कहा तब सहयोग लेना पड़ता है तो लो, परंतु वो सहयोग भी अल्पकाल का हो, वो सहयोग परम से सहयोग लेने के लिए है। जैसे एक छोटी सी कहानी बताते हैं और फिर इस क्लास को पूरा करेंगे। एक सूफी फकीर अपने शिष्य के साथ निकल पड़ा था हज की यात्रा के लिए, रेगिस्तान का सफर था, दोनों बहुत ही प्यासे थे, और फिर देखा एक बहुत ही प्यारा सा झरना, उनके पास पीने के लिए कुछ नहीं था, वहीं एक पात्र पड़ा था, वो पात्र उन्होंने उठाया और उससे जल पीने लगे तो देखा पानी तो एकदम जहरीला है, इतना जहरीला, इतना कड़वा कि फेंक दिया ऐसा लग रहा था प्राण अभी निकल जाए। तो सोचा अभी दूसरा झरना ढूंढते, दूसरे झरने के पास पहुंचते लंबी यात्रा के बाद, फिर परंतु पात्र अपने साथ ले जाते हैं, फिर मिले ना मिले, फिर से पानी निकालते हैं और पीने लगते, तो ये भी जल इतना कड़वा, इतना जहर, फिर से फेंक देते, सोचते कि अब क्या करें, अभी कैसे झरने हैं, कैसे ये स्थान है, और आगे बढ़ते, तीसरा एक बहुत सुंदर झरना मिलता है, पानी फिर से लेने जाते, फिर से वही कड़वाहट, और फिर से फेंकते हैं, कहते हैं अब क्या करें। देखते हैं पास में ही एक योगी बैठा हुआ है, उससे पूछते हैं कि यहाँ के क्या सारे झरने ऐसे ही है? वो कहता है यहाँ के झरने तो बहुत अच्छे हैं, मैं इन्हीं झरनों पर तो जी रहा हूं, पर ये तो झरने बहुत कड़वे हैं। वो कहते कड़वे तुम्हारा पात्र है, पात्र को छोड़ो और डायरेक्ट पियो, क्या करो, पात्र को छोड़ो और डायरेक्ट पियो, परमात्मा प्रेम की धारा बह रही है, प्रभु प्रेम का झरना बह रहा है संगम पर, जितना पीना है, जितना लूटना है लूट लो। तो अभी सभी अलर्ट होके बैठेंगे, एक छोटे से योग का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद बाबा ने कहा है कि एक सेकंड में कहां पहुंच जाओ, परम धाम। चमकीली बूंद। संपूर्ण निस्तब्ध था, संपूर्ण निःशब्द था। और यह विराट ब्रह्मलोक यह शांति का राज्य एक चमकती हुई बूंद अपने स्वरूप में मैं स्थित हूं। मेरी दृष्टि पड़ रही है नीचे एक चमकीली 84 सोपान वाली चमकती हुई सीढ़ी। और मैं एक दिव्य बूंद आकर्षित हो रही हूं नीचे उतरने के लिए। स्वसंकल्प से चेतना की यह बूंद मैं निराकार आत्मा नीचे गिर रही हूं। यह सीढ़ी कैसी चमक रही है, प्रथम सोपान पर यह बूंद आते ही स्वर्णिम रंग धारण कर लेती है। एक सोपान से दूसरे सोपान पर मैं बूंद गिर रही हूं। गोल्डन कलर की यह बूंद मैं आत्मा स्वर्णिम युग में हूं। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी मैं चेतना की बूंद नीचे उतर रही हूं। कुछ समय के बाद मेरा यह स्वर्णिम रंग अब रजत रंग में रूपांतरित हो गया है। नीचे उतर रही हूं। कई वर्ष हजारों वर्ष पूर्ण हुए और चेतना की यह बूंद अब आई है ताम्र युग में। फिर मेरा रंग बदला इस कॉपर रेज में ताम्र रंग की मैं बूंद फिर नीचे उतर रही हूं। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, एक सोपान से दूसरा सोपान और धीरे धीरे पहुंच जाती हूं कलयुग में। और मेरा रंग जलकर लोह का हो जाता है। वर्ष बीते, हजारों वर्ष बीते, अंतिम सीढ़ी लंबी यात्रा में मैं थक गई हूं और इस सीढ़ी से, इस कलयुग की कगार से मैं बूंद नीचे गिरती हूं। स्वयं भगवान की गोद में हीरे तुल्ले से युग में स्वयं परमात्मा का अवतरण, और उस गोद में गिरते ही चेतना की यह बूंद एक दिव्य फरिश्ता रूप में धारण करती हूं, एक चमकीला फरिश्ता, खास एकदम फरिश्ता। चलती हो ऊपर सूक्ष्म वतन में, स्वयं बाप दादा सम्मुख, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर, अनुभव कर रहा और बाबा ने वरदान दिया बच्चे अमर भवा, चिरंजीवी भवा। अजस्त्र प्रेम की धाराएं बह रही है, वह अमर नाद, वह अमर संगीत, अमरनाथ का यह गीत चित्त में भर गया है, आत्मा पुलक से आनंद से झूम रही है, और इसी अनुभव को लेकर मैं फरिश्ता धीरे धीरे नीचे उतरता हूं, पुनः इस पार्थिव कलेवर में प्रवेश करता हूं। ओम शांति।